نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. توحید ہماری روح کی غذا یا طلب. آج ہم اس موضوع کو دیکھیں گے. آج کا ہمارا جو لیکچر ہے یہ پی کے ٹرپ 22-23 کا ایک لیکچر ہے, اور اس میں ہم نے ایک سیریز اپنے لیے چوز کی ہوئی ہے, قرآن کا مطلوب انسان. توحید کیا ہے؟ دیکھیے, ہم سب مسلمان ہیں, اور خاص طور پہ اس وقت میں چونکہ پاکستان میں ہوں, پاکستانیوں سے بات کر رہی ہوں, تو ایک سلوگن, ایک نعرہ جو ہم نے بچپن سے سنا, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہمارے لیے یہ کوئی نیا سلوگن نہیں ہے. ہم نے کسی مشرک گھر میں نہیں آنکھ کھولی کہ وہاں بت پوجے جائیں. پیگن بت پرست نہیں ہے ہمارے پیرنٹس. بالکل اسی طرح سے کرسچین گھرانے میں نہیں ہے کہ جہاں جیسس کو سن آف گاڈ یا گاڈ کا کوئی کانسیپٹ دیں. ہم سب مسلمان ہیں, لیکن میرا ایک سوال ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ توحید کیا ہے, توحید کس کو کہتے ہیں؟ چلے, میں اس کو بھی اکثر یہ آسان کرنے کے لیے بول دیتی ہوں کہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے اللہ کے بارے میں. کچھ لوگوں کا کیا خیال ہے, قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے. حالانکہ یہ قرآن نہیں بتاتا, یہ تو ہماری فطرت بتاتی ہے. قرآن بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے, اور لفظ توحید واحدہ سے, واحد کل اللہ احد, احد بھی اسی سے ہی ہے. تو آپ کی میری روح جو آج اس وقت مجھے آپ کی ایک دوسرے کی نظر نہیں آ رہی, لیکن ہمیں جسم ایک دوسرے کا کسی حد تک دکھتا ہے نا, تو جو روح ہے نا, اس کی طلب, اس کی پکار کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ. اور اس کے لیے جو آیت ہم جو بات دیکھیں گے وہ سورۃ الاعراف کی آیت 172 ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب سے, آج چاہے مسلم بنے کوئی نان مسلم ہو, آدم سے لے کر آخری انسان جو اس دنیا میں آنے والا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الستو بربکم قالو بلا. آیت 172 کا ایک چھوٹا سا یہ ٹکڑا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو وہ کہنے لگے کیوں نہیں, ہم اس پر گواہ ہیں. اس کو کہتے ہیں وعدہ الست. ہم سب ابھی اپنے ماں باپ کی پشتوں میں تھے, یعنی ابھی ہم انسان بن کر کہہ لیجئے کہ دنیا میں وجود میں نہیں آئے تھے. آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تھا تو ان کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا. جو چیز ہمیں احادیث سے ملتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا اور ان سے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ تم دنیا میں جا کر کس کو رب مناؤ گے. الستو بربکم, کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ تو ہم سب نے, یعنی قیامت تک آنے والے ہر بچے اور ہر بڑے نے کہا تھا بلا, کیوں نہیں, وائی ناٹ, یعنی مطلب یہ کہ یس, شہید نہ, ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں پرو دیا. آپ اکثر لفظ فطرت سنتے ہو گے, سنتے ہیں نا, فطرت, فلاں کی فطرت, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. سورۃ زمر میں بہت دفعہ فطرت کا ذکر ہے کہ وہ فطرت جس پہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا. پھر اسی طرح سے فطرت کا یہ لفظ کو اگر آپ اس حدیث سے سمجھیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بچہ ایک فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, یہ ہر بچہ فطرتاً مسلمان ہوتا ہے, کل مولود یولد علی الفطرہ, لیکن بعد میں پھر اس کے ماں باپ اس کو کوئی بھی دین بناتے ہیں. یعنی بچہ جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے وہ وہی زبان بولنے لگتا ہے, اسی ماحول کا عادی ہو جاتا ہے. یہ جو توحید ہے نا, یہ آپ کی میری روح کی آواز ہے. میں اس کی ایک دو مثالیں آپ کو دے دیتی ہوں. ماشاءاللہ آپ نے, میں نے بچپن سے یہ بات سنی کہ لا الہ الا اللہ, تو سبھی مانے. ہم میں سے کسی کی ہو سکتا ہے رسم بسم اللہ ہوئی ہو کبھی زندگی میں. مولوی صاحب نے بیٹھ کر سب کے سامنے کہا چلو بیٹا پڑھو بسم اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور سب نے کہا دیا آج بچے نے قرآن شروع کر دیا, چلو جی اس کو سورہ فاتحہ شروع کراتے ہیں. پھر ہمیں سمجھ آ گیا. لیکن قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے. سورۃ مریم اگر آپ کھول لیں تو بالکل دوسرے ہی رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کلام جو انہوں نے ماں کی گود میں بولا تھا, اور وہ کیا تھا, انی عبداللہ, عبد, غلام, जैसे हम कहते हैं ना, या का नाबुदु व या का नस्ताइन, बिल्कुल वही लफ्ज ज़हन में रखिए। हजरत ईसा को किसने बताया था ये बात? क्या माँ बताती है? हजरत मरियम ने कोई कोर्स करवाया था? अभी तो बच्चा है, अभी तो बोल ही नहीं रहा, अभी तो उसकी ऐसी कोई पहचान ही नहीं बनी। तो उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो बोले थे ना, वो ये वादे अलस की वजह से थे। अच्छा, आप कहते हैं मुझे तो याद ही नहीं, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आप इस माँ के घर पैदा हुए थे, आपको ये याद है? क्या हम में से किसी को अपना डे ऑफ, मैं डेट नहीं कह रही, वो डेट जिस दिन वाकई हम पैदा हुए थे, क्या वो हमें याद है? हमें नहीं याद। यही औरत मेरी माँ है, किसने कहा? लोगों ने कहा मान गए, ये शख्स तुम्हारा बाप है। किसी ने बताया कोई सर्टिफिकेट, अपना बर्थडे सर्टिफिकेट उस वक्त देख रहा था, कर रहा था? नहीं देख रहा था। तो बिल्कुल जिस तरह एक बच्चा जब पैदा होता है ना, तो दूसरों के कहने पे, देखिए दूसरे तो बाद में बताएंगे ना, कभी आपने सोचा कि रोता बच्चा माँ के हाथों में चुप हो जाता है? माँ सीने से लगाती है, बच्चे को ऐसे सुकून मिल जाता है जैसे इससे ज्यादा कोई महफूज जगह ही नहीं है। खाला पुप्पी क्या वो चुटकियां काटती हैं? दादी, आप देखिए रोता बच्चा सिर्फ माँ की गोद में आके चुप होता है। जिस तरह उस बच्चे को ये पता है कि ये औरत मेरी माँ है। और इसकी मिसाल हजरत मूसा, मशहूर बात है ना कि 3 दिन तक रोजे से ही रहे। लोगों की आजमाइशें तो बड़े होने पे शुरू होती हैं, हजरत मूसा की आजमाइश तो दूध पीते बच्चे में हो गई शुरू, और किसी और का दूध ही नहीं पी रहे। अल्लाह कहते हैं हर्रमना अलैहिल मुरादे, हमने हर दूध पिलाने वाली औरत का दूध मूसा पे हराम कर दिया था। तो क्या पता चला इतनी बात का कि तौहीद रूह की आवाज है। जैसे खाना खाकर सेचुरेशन होती है, पानी पीकर प्यास बुझती है, इसी तरह अल्लाह को एक मानकर ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे को पूरा करके हम हकीकत में अल्लाह सुब्हान तआला को पहचानते हैं। अल्लाह ताला की जात आपको मुझे इस दुनिया में भेजने से पहले ये सबक पढ़ा चुकी है क्या कि कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। क्या पता चला कि बच्चे की फितरत के अंदर गुंदा हुआ है वादे अलस्त। आज किसी भी बच्चे को जब आप एथियस्ट बनता देखते हैं, तो मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि एथियज्म इज नॉट नेचुरल। बड़ी मुश्किल से वो अपनी रूह के अंदर से खुदा का वजूद खत्म करने के लिए तैयार होते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। उनको पता है कि ये हमारी रूह की गजा है। बिल्कुल जैसे आप देखिए कि गाड़ी में पेट्रोल डलता है, ऐसे ही है ना, और आप जमजम क्यों नहीं डालते? आप कहते जमजम में शिफा है। आप शहद क्यों नहीं डालते? और अगर कभी किसी ने डाल दिया तो गाड़ी चलेगी? आप कहते शहद में बड़ी शिफा है। नहीं, गाड़ी शहद के लिए नहीं बनी। और इसी तरह से दूध बड़ा अच्छा होता है, तो आप दूध डालिए गाड़ी में, नहीं चलेगा। बिल्कुल इसी तरह हर चीज की एक असल होती है। हमारी असल, हमारे अंदर का सुकून क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी को बाद में आप कहते हैं अला बिजिक्रिल्लाह तत्मइन्नल कुलूब। खूब जान लो कि अल्लाह की याद से, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। और ये सबक पढ़ाने के लिए आपको किसी स्कूल मदरसे में भेजने की भी जरूरत नहीं है। 3-4 बच्चों के नाम अहादीस से हमें मिलते हैं कि जो बचपन में बोले थे, जिसमें एक हजरत ईसा थे। इसी तरह एक जुरैच नाम के शख्स थे, नेक शख्स थे, राहिब थे, इबादत गुजार थे, इबादत के लिए कुटिया बनाई हुई थी और उसमें इबादत करते रहते थे। 1, 2, 3 बार ऐसा हुआ कि वो इबादत की कैफियत में थे, तो वालदा ने बाहर जाके पुकारा, या जुरैच, या जुरैच। तो ये अब फिक्र में है, सोच में, क्या करूं, माँ की बात का जवाब दूं कि ना दूं, क्या करूं, कैसे करूं। इतने में माँ चली गई। अब माँ को नहीं पता कि वो अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। माँ ने देखा कि शायद जान के नहीं कर रहे। फिर एक और वक्त आई, इत्तफाकन 3 दफा माँ आई और तीनों दफा वो बात का जवाब नहीं दे सके। तो माँ को गुस्सा आया कि कैसा बच्चा, ये तो आजकल के बच्चे नहीं है ना, कि जो कहते हैं भाई मॉम, बाहर से बैठ के आवाज देते, और माँ पुकारती रहे, चीखती रहे, वो कहते हैं ठीक है बोलती रहे, हमने तो नहीं कहा था मैं बुलाओ ना। बिल्कुल इसी तरह से हजरत जुरैच की माँ ने एक बद्दुआ दी कि तुझे मौत ना आए जब तक तू किसी फाहिश औरत का मुंह ना देख ले। अब ये एक बहुत बड़ी बद्दुआ थी, और आज भी उलमा कुछ कहते हैं कि जो लोग दिन रात फुहश औरतों को और फुहश तस्वीरें और गंदी बेहुदा फिल्में और ऐसी चीजें देखते हैं, असल में उनको माओं की कोई बद्दुआ लगी हुई है। तो वो कहकर चली गई। अब वो अपनी कुटिया में इबादत में मसरूफ थे कि एकदम बाहर शोर उठा। ये भी दरवाजा खोलकर बाहर देखने लग गए, तो देखा कि बस्ती के लोग हैं एक औरत के पीछे लगे हुए। और औरत के गोद में एक न्यू बॉर्न बेबी है, नौमौलूद बच्चा है। तो बस ये पूछ रहे हैं, बता ये किसका बच्चा है, बता ये किसका बच्चा है। अब उस औरत ने जू ही जुरैज को देखा दरवाजे में तो कहने लगी, इस जुरैज का बच्चा। अब लोग उस औरत को छोड़ के जुरैज के पास से, और वही बात है कि अच्छा जी मौलवी साहब और करतूत देखो, और लोग दीनदारों की तो एक एक चीज देखते हैं ना, उनकी तो अच्छी बात भी बुरी और बुरी भी बुरी। उन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया, उसकी कुटिया गिरा दी। अब जुरैज सच्चे थे, उन्होंने वहीं खड़े होकर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तू तो जानता है ना कि मेरी हकीकत क्या है, आज मेरी बेगुनाही साबित कर दे। तो जो बच्चा था ना वो बोला कि मैं जुरैज का नहीं, मैं फलां चरवाहे का बच्चा हूँ। शेफर्ड उस औरत ने किसी के साथ मुकाला किया और अब अपनी जान छुड़ाने के लिए जुरैज को निशाना बना दिया। जो ही लोगों ने उस बच्चे से ये बातें सुनी तो शर्मिंदा हो गए, माफी मांगने लगे, कहने लगे आप इजाजत दें तो हम आपकी ये कुटिया सोने की बना दें। उन्होंने कहा सोने की ना बनाओ, जैसी थी बस वैसी बना दो। और लोगों ने कहा मैं माफ कर दें ये वो। उन्होंने कहा असल बात तुम्हारी नहीं है, मुझे मेरी माँ की बददुआ लगी है, इस फाहिश औरत ने मेरे पे इल्जाम लगा दिया, लेकिन चूंकि सच्चे थे तो अल्लाह ने बच्चे को बुला दिया। अब वो बच्चा बोलता है, बच्चा किसके हुक्म से बोलता है, अल्लाह के हुक्म से बोलता है ना। तो अल्लाह सुबहाना ताला एक है और इसका कोई शरीक और इसका साझी नहीं है, और इंसान की फितरत में ये चीज डाल दी। जो कंप्यूटर्स यूज करते हैं, आप में से किसी ने कभी नया कंप्यूटर खरीदा हो ना, तो उसमें पहले सारे सिस्टम्स डालने होते हैं, कुछ में डले हुए कुछ कुछ आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोई एडिशन उनका कोई फलां डाल दिया जाता है। अगर ना डाला हो ना तो आप कोई पावर पॉइंट खोलेंगे तो वो नहीं दिखेगा, पीडीएफ नहीं दिखेगा और वर्ड नहीं खुलेगा। जो चीज़ एक दफ़ा डाउनलोड कर दी गई अब उसको आप जितनी दफ़ा मर्जी यूज़ कर लीजिए, आपकी मेरी फितरत में अल्लाह ने ये डाउनलोड कर दी है। अगर कंप्यूटर्स की जुबान बोल दूँ तो तौहीद हमारी फितरतों में आप कह लें अपलोड कर दी गई है, अब उसको डाउनलोड करना है। चले आपने अक्सर ये चीज़ भी देखी होगी, मेरे साथ तो रोज ही होता है, जब भी नई जगह जाते हैं आप वाईफाई के सिग्नल ढूंढते हैं, आपका जो फोन है ना वो घूमना शुरू हो जाता है, सर्चिंग सर्चिंग। अब जो ही उसको कोई भी ऐसा नेट दिखता है जो कभी पहले जिंदगी में उसने एक दफा ऑन किया हो, मसलन इस घर में अगर मैं पहले भी आई कभी, मेरे पास सेम लैपटॉप था और इनके पास सेम आज भी वही वाईफाई है जो आज से 1 साल पीछे था, तो आप देखेंगे जो ही मैं कंप्यूटर खोलूंगी ना तो मेरा वाईफाई सिस्टम घूमना शुरू होगा और कनेक्ट हो जाएगा। खासतौर पे आपने अगर ऑटो कनेक्ट की लगाई होती है तो खुद ही हो जाता है। ये जो आपके फोन की सर्चिंग या आपके लैपटॉप की सर्चिंग है ना, ये है फितरत की पुकार। इसको कुरान कहता है अवाब मुनीबीन, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले। हमारा नफ्स भी सर्च करता है, घूमता रहता है घूमता रहता है, किधर अल्लाह अल्लाह किधर है, अल्लाह की बात अल्लाह की ज़ात। और ये जो अल्लाह भी जिक्र अल्लाह ही तत्मइन्नल कुलूब है ना, वो यही है। जब कंप्यूटर को सिग्नल मिल गए घूम घूम के सेट होके चुप हो जाता है, अगर खुदा ना खासा भी नेट बंद हो ना तो वाईफाई फिर घूमना शुरू होता है। ये जो सर्चिंग है ना ये थर्स्ट है, और जब वो उसको सिग्नल मिल गए तो मुतमईन है। एग्जैक्टली हम सबके साथ भी ऐसे ही है, हम अपने रब के होना चाहते हैं। लोग चांद पे चले जाएं, लोग अमेरिका चले जाएं, लोग कनाडा चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, टम्बकटू चले जाएं, वो दुनिया के खूबसूरत तरीन मुकाम पे चले जाएं, लेकिन अगर उनकी रूह भूखी है रूह प्यासी है तो कभी खुश नहीं होंगे। आज हम आ रहे थे तो हमारे साथ एक बच्ची थी, वो अपना पेपर देने जा रही थी, तो उससे पूछा कि किस चीज़ का पेपर, तो उसने कहा साइकोलॉजी का। खैर बात शुरू हो गई, मैंने कहा कोई बात सवाल जवाब पूछो क्या है, तो वो जो बातें कर रही थी तो मैं उसको फर फर करके कुरान से जवाब दे रही थी। ये जो साइकोलॉजी कहती है ना इंसान बेचैन है परेशान है, परसेप्शन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट क्या है, लोग आज डिप्रेशन में क्यों हैं, स्ट्रेस क्यों है। आज आपके अपने इस मुल्क में आपकी यूथ के अंदर डिप्रेशन है, आज आपके अपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल्स ऐसे बच्चे बच्चियों से भरे पड़े हैं जिनके पास जीने का कोई मकसद नहीं है, जिनको जिंदगी से बिल्कुल प्यार नहीं है। अभी छुट्टियां गुजरी हैं और बल्कि अभी तक गुजर रही हैं, हमेशा ही दुनिया पूरी में तकरीबन दिसंबर के आखिरी 10 दिन छुट्टियां होती हैं ना, बच्चे एमलेस फिर रहे हैं। वो क्यों उठे? आप कहते हैं उठो सुबह उठो, देखो रोज 7 बजे जाते हैं ना, आज देखो बिस्तर पे पड़े हैं 11 बजे 12 बजे, क्यों भला? इसलिए कि उनके पास काम ही कोई नहीं है। माजरत है, माओ के साथ अफसोस और तकलीफ के साथ कहूंगी, हमने अपने बच्चों को प्यासा रखा हुआ है। बच्चा नाश्ता ना करे ना तो माँ के दिल को कुछ होता है। लेकिन हमने अपने बच्चों को दीन से दूर रखा हुआ है। मुसलमान घरों के बच्चे इतने बेमकसद, मैंने सारी दुनिया में इधर उधर नहीं देखे जितने हमारे मुल्क में। ना माँ ने घर का काम देना, ना बाप ने गले पे बैठने देना, ना बाप अब्बा जी काम पे साथ ले जाएंगे कि बच्चे को कि जरा इसको काम आ जाए, और ना अम्मा ने कहना है कि इसको चलो कोई और काम नहीं तो ये तो आ जाए। नतीजा के हमारे बच्चे फ्री। फिर वो ये हमारे हाथों में फोन, ऑक्सीजन मास्क की तरह ये फोन हाथों में है। आज कितने रिश्तों के मसले, जवान बेटियां हैं रिश्ते नहीं है, जवान बेटे हैं रिश्ते नहीं। कभी बाहर सड़कों पे देखिए, वल्लाही आपके लाहौर की ट्रैफिक से तो मैं बड़ी आजिज आती हूँ। इतनी आबादी है तो किधर के लड़के, क्यों नहीं मिल रहे आपको? लड़कियां किधर गई? हर जगह तो क्राउड है आपके पास, सड़कों पे रश, मॉल्स में रश, जहां भी जाइए। तो क्यों लड़के लड़कियां क्यों नहीं मिल रहे? लड़के वाले कहते लड़की दिखाएं, लड़की वाले कहते लड़का दिखाएं। और जब शादी हो जाती है निभती कोई नहीं। एक शादी हमने भी अटेंड की थी, अरब में थी, तो अभी मुझे एक सिस्टर थी मिली, और मिली तो मुलाकात याद कराई कि हम वहां अरब में मिले थे और शादी और ये वो, तो कान में कहती टूट गई है वो शादी। हरम में मैं दो शादियों की गवाह हूं, मैं खुद भी उसमें इन्वाइटेड थी, और माँ बाप दोनों तरफ के इतना खर्चा पानी करके खुद भी गए, लड़की लड़का भी गए, फिर साथ अपने 8-10 20-20 लोगों को लिया, 5-स्टार होटल्स में रखा, फिर वहां किसी भी इमाम साहब को बुलाकर हरम की लाइब्रेरी है उसमें निकाह पढ़वाए गए, फिर उसके बाद होटल्स में खाने खिलाए गए, अगले दिन वलीमे हुए। क्या के बरकत हो, मैं दो शादियों की चश्मदीद गवाह हूँ, दोनों खत्म हो गई आज। और फिर बाद में ये भी हौका सुना कि हाय हाय इनकी तो शादी हरम में जाके की थी, क्यों नहीं बनती? आज क्यों हमारी यूथ परेशान है? आप कहते हैं आपके बच्चे को मास्टर्स चाहिए, उसको BSc करवाना है, उसको डॉक्टर चाहिए, आपकी फितरत भूखी है। मैंने 1 साल पाकिस्तान आना था तो मुझे टॉपिक्स हमेशा चूज हम करते हैं, साथियों के मशवरे से हमेशा करती हूँ, कोशिश करती हूँ हर चीज में मशवरा करूँ। तो मुझे जो बहुत ज्यादा सोच इस दफा दी गई थी कि आप सुसाइड पे बात करें, खुदकुशी पे, मैंने कहा क्यों अल्लाह रहम करे क्या हुआ, कहेंगे हमारे बच्चे खुदकुशियां कर रहे हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल्स में बच्चे बच्चियां डिप्रेशन में पड़े हुए हैं। क्या नहीं दिया आपने उनको? 2-2.5 लाख रुपए का फोन उनके हाथ में, 10-20 हजार रुपए का जूता है उनके पाँव में, बनियान अगर आपने कोई काटा माटा डाली हुई तो ब्रांड की पहनी हुई तो वो भी 2-3 हजार की, आपके मुल्क की बनियान है। आपने क्या नहीं दिया अपने बच्चों को? आप एक कॉल करें, कल पहली दफा बाहर किसी वजह से, कल एक आध दिन पहले इनके लिए जो हमारे दोस्त थे उन्होंने एक बर्गर मंगाया, जब मैंने कहा मुझे दिखाओ आया कितने का है, पर्ची देखी, मैंने कहा अल्लाह की कसम मैं कभी ना मंगाऊं बाद में कभी, 1000 रुपए का आप एक बर्गर, 4 नवालों में पेट भी नहीं भरता आपके 1000 में। आज भी मेरा तो गुमान है 2-3 मुर्गियां पूरी आ जाती होंगी, किलो फिश आ जाती होगी। क्या नहीं खाते हमारे बच्चे, क्या नहीं पीते, लेकिन क्यों हम इतने परेशान हैं? आज आपके पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? आप कहते बिजली जाती है, अब गैस जानी शुरू हो गई है, सड़कें टूटी, गटर खराब, और गंदगी तो हमें लगती भी नहीं, अब वो हमें नहीं मसला लगता, वो तो उनको लगता है जो बेचारे कभी कभी आते हैं, वहीं गंदगी पड़ी है और उधर जलेबियां तली जा रही हैं और खाई जा रही हैं, और जला भला घी और उसमें समोसे फ्राई कर करके खिला रहे हैं। अब हमारी मत मार चुकी है इस पर, खाने पीने पर हम कहते हैं लोकल भी तो खाया था तो जिंदा ही रही हो ना, मैंने नहीं मरना, मुझे नहीं कुछ होना। आज हम अपने बच्चों की रूह की फितरत की ये पुकार नहीं सुन पा रहे कि हमें अल्लाह का बनाओ, हम अल्लाह का बनना चाहते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही मुस्लिम में 6760 नंबर है, अबू हुरैरा रावी हैं कि जो बच्चा पैदा होता है वो फितरत पे पैदा होता है, फिर इसकी माँ या इसके बाप यानी माँ बाप इसको यहूदी या नसरानी बनाते हैं। जैसे ऊंट जनते हैं तो कोई इनमें से कान खटा पैदा नहीं होता, बल्कि तुम इनके कान काटते हो, ये अरबों की रस्म थी। बहीरा साहिबा हाम, सूरह मायदा के शुरू में आज अल्लाह ने कुछ माँ जल्लाम बहीरा तिन वाली बात, यानी बुतों के और अपने वीरों के और बुजुर्गों के नाम पे जानवरों के कान काट दिया करते थे, और फिर काट के कहते थे अब ये बड़े पहुंचे हुए हो गए हैं, अब इस पे बैठना नहीं, इसका दूध नहीं पीना, ये वो इस तरह की कहानियां थी। अल्लाह कहते तुम कान काटते हो। तो लोगों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल जो बच्चा बचपन में मर जाए, जो मर जाता है यदि मुसलमान घर में पैदा हुआ, यहूदी के घर हुआ, एथियस माँ थी, कोई चाइनीज थी, कोई जापानीज थी, किसी का कोई भी दीन नहीं था, उन बच्चों का क्या होगा? तो आपने फरमाया अल्लाह जानता है ऐसे बच्चे क्या अमल करते, यानी तकदीर अल्लाह का इल्म है, हुक्म नहीं है। अल्लाह को अपने इल्म से पता था कि इस बच्चे ने बड़े होकर क्या करना है क्या नहीं करना। तो इतनी बात का खुलासा, अकीदा तौहीद ही इंसानी तारीख का सबसे पहला अकीदा। दुनिया के पहले इंसान हज़रत आदम थे और वो अकीदा तौहीद के कायल थे। कुरान ने इस बात की भी बात की है कि शुरू में वकान नासु उम्मतम वाहिदा, सूरह बकरा में बिल्कुल शुरू में ही, मतलब मिडल के बीच कह लीजिए आयत आती है कि सब लोग एक उम्मत पे थे, फिर अल्लाह ने अंबिया कराम भेजे। तो याद रखिए तमाम अंबिया कराम नौ इंसानियत की तरफ जो भेजे गए वो इसी तौहीद की दावत दे रहे थे। आप जब भी कुरान खोलेंगे आपको मिलेगा, मसलन सूरत अल अंबिया की आयत नंबर 25 है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वमार सलना मिन कबलिका मे रसूल इल्ला नूही इलैहि, हमने तुमसे पहले जो रसूल भी भेजे इनको उसने यही वही की क्या कि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई इलाह नहीं, लिहाजा फाबुदून, मेरी इबादत करो। हर नबी की दावत का कॉमन फैक्टर ला इलाहा इल्ला। अब सवाल ये कि हम तो मुसलमान हैं, बचपन में एक कान में अजान दूसरे में इकामत, दूसरे लफ्जों में आपके एक तरफ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो फिर जिनके कानों में नहीं पड़ी फिर वो क्या करें। आप के भी आज के इस मुल्क में 2-3% लोग क्रिश्चियन और नॉन मुस्लिम तो है ही ना। आप अपने बच्चे को कहते हैं कि तुम्हारा जो क्रिश्चियन दोस्त है उसके साथ अच्छा ताल्लुक रखो, उसको अच्छा इस्लाम दिखाओ, फिर उसको दावत दो इस्लाम की, तो आपका बच्चा ये सवाल कर सकता है कि भाई मैं उसको कहूँ या तबलीग करूं या मेरे बताने पे वो मुसलमान हो जाए तो मैं क्यों ना उसके कहने पे क्रिश्चियन हो जाऊं। जी हो जाओ, देखिए ना हर एक को अपना दीन अच्छा लगता है, बल्कि चले आसान करती हूँ, इस मुल्क में तो इतना इशू नहीं, बाहर के मुल्कों में बच्चे ये सवाल बहुत पूछते हैं कि मामा हम तो मुसलमान हैं और हम कहते हैं मुसलमान जन्नत में जाएंगे, तो फिर मेरे क्रिश्चियन दोस्त का क्या कसूर है, मेरे हिंदू दोस्त का क्या कसूर है। सवाल समझ आ रहा है आपको? तो इसका जवाब लीजिए, अल्लाह को पाने के चार तरीके हैं। अल्लाह ने चार मुख्तलिफ दरवाजे खोले इंसानों के लिए जिसके जरिए आप अल्लाह को पहचानेंगे, जिसमें सबसे पहला वो है जिसको अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, अलस्तु बिरब्बिकुम। हर इंसान की फितरत में तौहीद भर दी। आज कोई बच्चा जिस घर में है नो प्रॉब्लम, सबसे अल्लाह ने वादा लिया था, और हदीस में आता है कि अल्लाह ने आदम की पुश्त पे हाथ फेरा, सबकी रूहें दुनिया में ऐसे फैल गई जैसे जुनूदुम मुजन्नदा, रेत के जर्रों की तरह आपकी मेरी रूहें थी, चमक रही थी रूहें। दुनिया में जिन रूहों में मोहब्बत है उनकी वहां भी थी, जिनका दुनिया में कोई अच्छा ताल्लुक है वहां भी था, जहां बुग़्ज़ है वहां भी था। और अल्लाह ने सबसे पूछा था कि बताओ मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो उन्हें कहा बल्ला। पहली चीज जो सब में कॉमन है, जहन्नुम में जाने वाले और जन्नत में जाने वाले, औलिया कराम वलीउल्लाह कुतुब गौस, इनसे ऊपर जाकर आप कोई भी नाम रखते हैं अंबिया कराम तक, उन सब के साथ ये प्रोसेस हुआ। फिरौन के साथ भी ये प्रोसेस हुआ था, नमरूद शद्दाद हामान, सब की रूहों से अल्लाह ने वादा लिया था, इसमें सब कॉमन है। और इसी की बुनियाद पे हजरत ईसा बोले, इसी की बुनियाद पे आज आप देखिए कि जब लोग रिवर्ट होते हैं ना, कलमा पढ़ते हैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी खबरें सुनी होंगी कि फुटबॉल मैच के दौरान कतर में जो दावा हुई उसके नतीजे में सैकड़ों लोग मुसलमान हुए। जितने लोग भी मुसलमान होते हैं ना, वो एक कॉमन चीज कहते हैं सुकून, और उनकी आंखें गीली होती हैं। आप कभी किसी को आंखों से देखें, टीवी स्क्रीन पे चले अगर कभी देखें ना, कलमा पढ़ते ही वो रो पड़ते हैं। मेरे पास ऐसी बुक्स भी हैं और BCO वीडियोस देखिए, आप खोल कर देखिए, रिवर्ट्स, हाउ आई रिवर्ट, हाउ आई केम क्लोज टू इस्लाम, एकदम फिस नहीं पड़ता बंदा पंजाबी में जो कहते हैं। और इसकी दलील सातवें पारे के बिल्कुल पहली आयत में, वाइजा समी उमा उन जिला इला रसूली तरा यू नहुम तफीदु मिन दमी मे मारफू मिन अल हक। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब उन्होंने रसूल की जुबान से वो कलाम सुना जो उस पर नाजिल हुआ था, तो तुम देखते हो कि उनकी आंखें आंसुओं से छलक पड़ती हैं, आंखें ही रो पड़ी। ये नहीं कहा कि आंखों में आंसू है, आ यू नहुम दम नहीं कहा, दमू कहते हैं आंसुओं को, आंखें ही बह पड़ी, यानी इतना रोए कि आंखें बहती हुई दिख रही हैं। क्यों? मिम्मा रफू मिनल हक, ये रफू मिनल हक जो है ना, ये इसी की वजह से कि वो कहते हो कि ये तो मेरी कोई गुमशुदा चीज है। देखिए कभी को बच्चा बचपन में माँ बाप से जुदा कर दिया जाए और 8-10 साल की उम्र में वो अपने माँ बाप को पाले, जैसे हजरत यूसुफ बचपन में गुम गए थे, तो वो जब इतने साल की जुदाई के बाद सामने आता है तो उसके दिल में जो तड़प होती है ना, यही कैफियत इंसान की अल्लाह को पाकी होती है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज अकल, ये जो आपके मेरे सर में एक छोटा सा खोपड़ी के अंदर अल्लाह ने भेजा रखा है ना, ये भी सबका एक जैसा। ये तो नहीं कि मुसलमानों की अकल छोटी होती है और काफरों की बड़ी है, या मुसलमानों की बड़ी है तो दूसरों की छोटी है। हम तो कहते हैं अकल पाँव में है या फलां टखनों में उसकी अकल है, सबका सर में ही है। दो चमचियों बराबर भेजा होता है मगज, बकरे ब्रेन तो खाते हैं ना, एक चमची भर होता है। और आप कुरान में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ देखेंगे, ख़ास तौर पर सूरत अलक में आती है ना, जिसमें पेशानी इसकी बात की जाती है, सनद उस जबानिया, बिल्कुल पहली वही की जो आए थे ना उसके आगे ही आता है, खातिया का लफ्ज आता है, उसकी पेशानी खताकार। आज साइंटिस्ट ने ये बात बता दी कि इंसान का ये जो फ्रंट पार्ट है ना, ये फोरहेड, इधर से सोच का काम होता है। और आप जानवरों का आज के बाद नोट कीजिएगा, उनका ये हिस्सा बहुत छोटा होता है क्योंकि उनमें सोचने की कैफियत नहीं, लेकिन इंसान को अल्लाह ने सोचने की दावत दी, ये भी सब में बराबर है। तो आपके नॉन मुस्लिम फ्रेंड, आपके क्रिश्चियन दोस्त के पास भी वही अकल है जो आपके पास है। ये तो नहीं है कि मुसलमान की अकल ज्यादा है तो उसकी कम है, तो इसमें भी सब बराबर है। तीसरा रिसोर्स है कायनात, यूनिवर्स। ये तो नहीं है कि मुसलमान को घास सब्ज दिखता है और क्रिश्चियन को ग्रे रंग का दिखता है, और मुसलमान सब्ज घास दे के अल्लाह का कुर पा ले, अल्लाह ने बनाया, और नॉन मुस्लिम को ना दिखे। जैसा सूरज चांद सितारे बारिश हवा मुझे दिखती है, ऐसी नॉन मुस्लिम को भी दिखती है, उसमें भी बराबर है। तो तीन चीजें तो कॉमन निकली ना, बस हम सब, मैं आप जैसे मुस्लिम्स, घरों में पैदा होने वाले बच्चे, उनको एक एक्स्ट्रा चीज मिली, फोर्थ रिसेप्टर ऑफ गाइडेंस, फोर्थ थिंग टू रिकॉग्नाइज अल्लाह सुबहान तआला इज वही इलाही, इक़रा बिस्मि रब्बिका। इसमें कुरान जो इस वक्त आपके मेरे पास है, ये बिल्कुल प्योर है। नॉन मुस्लिम्स को भी मिला, क्रिश्चियंस को इंजील कह लीजिए, ज्यूस को तौरात मिली, उन्होंने बदल दी। सिर्फ एक चीज में हम आज के बोन मुस्लिम खुशकिस्मत हैं कि हमें जो कुरान मिला है ना, उसमें चेंज नहीं हो सकती। सूरत हिजर खोल लीजिए, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, बेशक हमने ही जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो क्या पता चला कि ये चीज है जिसने आपको मुझे अल्लाह का कुर्ब दिया। अब मैं एक सवाल करूं, जुरत करती हूँ, पहली तीन चीजें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की कॉमन थी ना, तो क्या ये जो वही इलाही जिसमें उम्मत मुस्लिमा कॉमन है, क्या सारे मुसलमानों ने ये कुरान पढ़ा हुआ है? समझते हैं क्या इस पे गौर व फिक्र है, इस पे तदब्बर है? तो फिर हम और वो सब बराबर है, माजरत के साथ। आज एक मुस्लिम बच्चा और एक नॉन मुस्लिम बच्चा ऑलमोस्ट बराबर है, इसलिए फिर हमें आज वो दिन देखने पड़ रहे हैं। अल्लाह ना करे अभी पाकिस्तान में ऐसा हो, बाहर से आते हुए को पूछ ले क्रिश्चियन लड़कों के साथ लड़कियां शादियां कर रही हैं, गोरों के साथ कर रही हैं, कोई दीन भी नहीं उनको, वो फिर भी कर रही हैं, और फिर माँ बाप मजबूरियों के नाम पे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सेलिब्रेट? क्योंकि इज्जत का मसला है। अब बच्ची ने भाग तो जाना ही है, तो फिर जो बेइज्जती होनी है, तो हम चार रिश्तेदारों को बुला के बता दें, प्रेग्नेंट बच्चियों की शादियां हो रही हैं। ये क्या बता रहा है? हमारे बच्चों को खाना नहीं मिला, उनकी रूह भूखी है। लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कि मौसीकी रूह की गजा है, तौहीद रूह की गजा है, कुरान रूह की गजा है। और आप देखिए कि कुरान की मुख्तसर सी सूरत, सूरतुल इखलास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह की जात में भी तौहीद है और उसकी सिफात में भी तौहीद है, ना उसको किसी ने जना, ना कोई उससे जना गया, ना उसकी कोई बीवी है, ना कुछ है। तो जरूरत इस बात की है कि हम सब पहले अपने आप को देखें, क्या हम मुसलमान वाकई अल्लाह के मामले में इस तौहीद को जानते हैं? चलिए अभी तक तो लफ्ज तौहीद तौहीद हो रहा है ना, ये बताइए कि आपको तौहीद की अकसाम मालूम है कितनी है? चंद सवाल खुद से करते हैं। नंबर एक, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, कई लोग 1.25 लाख पढ़ के रखते हैं, राहदारी का कलमा पढ़ा होता है, तस्वीयों पे पढ़ते हैं कलमा। मैं आपसे सवाल करती हूँ, कलमे का मतलब क्या है? सबको पता है। तो इलाहुन अल्लाह कह दिया जाए, हमारा इला अल्लाह नहीं, फर्क है दोनों में। ला की तलवार से सारे तागुतों का सर कलम करो, फिर तुम्हें इला समझ आएगा। चलिए कलमे की कितनी शुरूत है? शुरूत ला इलाहा इल्लल्लाह, शुरूत शर्त को कहते हैं, कंडीशंस। ला इलाहा इल्लल्लाह की कितनी शर्तें हैं, कौन सी हैं, क्या हैं? तीन सवाल। आप सब जद्दी पुश्ती मुसलमान हैं, आप में कोई रिवर्ट तो नहीं है ना? आपको नहीं पता ना कि कलमे की 9 बड़ी शरायत है, और तोड़ दें जरा सा दो को एक को जोड़ के अला करें तो 11, और इसको और भी इलाबोरेट कर दें तो 14 शरायत हैं। चलिए कौन सी हैं, 9 की बात करती हूँ, 9 शरायत कौन सी हैं कलमे की? नहीं पता। ये है हमारे हाल, इसलिए कब्रें, मजार, रौनकें, वहां आबादियां, और मस्जिद वीरान, आप मस्जिद के साथ किसी दुकानदार से पूछे ना मस्जिद में नमाज कितने बजे होती है, उसको नहीं पता होता। अजानें हो रही, एक नहीं छे छे अजानें इकट्ठी, क्या कोई टस से मस हो। वजह क्या, हमें पता ही नहीं मरेला कौन है, ये बाबा जी से कौन मांगने जाएगा। वो बाबा जी चले जो जिंदा बाबा जी बैठे हैं, जिनके सर में खाक पड़ी है, कपड़ों से बू आ रही है, बेचारों की मत मारी है, आप उनसे क्या मांगने जा रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि वह माँ कदरुल्लाह हक्का कदरी, जिसकी तौहीद पुख्ता हो जाए वो किसी और से मांग सकता है। देखिए, आपको ही मौका मिल जाए किसी बहुत पैसे वाले शख्स से कुछ मांगने का, या किसी फकीर या ड्राइवर से कुछ मांगने का, किससे मांगेंगे कि बेचारे गरीब गुरबा ने क्या देना। चोर भी नहीं, मेरा ख्याल है किसी झोंपड़ी में चोरी नहीं करने जाएगा, किधर से मिलना क्या है। कितनी ना समझी है, और फिर उससे भी बड़ी ना समझी कि उनसे मांगते हो जो कब्रों में जा चुके हैं, उनको जाके पुकारते हो जो सुनते ही नहीं, सुनते होते तो जवाब देते, जाओ खड़े होके पुकारो जवाब देते। कितना शिर्क है तुम्हारे मुल्क में, क्या जरूरत थी हमें ये मुल्क लेने की। अगर शिर्क ही से अपने आप को खुश रखना था तो इंडो पाक इकट्ठा ठीक नहीं था। कभी मंदिर में खड़े हो जाएं, कभी किसी दरगाह पे खड़े हो जाएं, कहीं कोर्स मना लें। असल बात यह है कि हमें तौहीद की वो अकसाम नहीं पता। चलिए शुरू छोड़ दें, वो तो बहुत ज्यादा, तौहीद के मौजू की कोई किताब का नाम लीजिए जो कभी आपने पढ़ी हो, नहीं पता। तो फिर याद रखिए कि शिर्क खुफिया, जाहिर, ढका, छुपा, अपेरेंट और कभी डोमिनेंट, हर तरह से शिर्क हमारी जिंदगियों में मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जैसे काली रात में स्याह पहाड़ पर चींटी नजर नहीं आती, इस तरह शिर्क नजर नहीं आता, गिरगट की तरह रंग बदलता है शिर्क। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बड़ा तस्करा है कुरान में, बुत तोड़े थे, सूरत अंबिया ही में आप पढ़ते हैं। हजरत इब्राहिम के दौर में बुत पूजे जाते थे, शिर्क की ये शक्ल थी। आज के दौर में शिर्क की शक्लें बदल चुकी, लोगों का डर, रियाकारी, दिखावा, लोग क्या कहेंगे, लोगों की बातों का डर, लोगों की खुशी, लोगों की नाराजगी। आज हमारा सारा नफा बैंकों के पास है, नुकसान हमारा कह लीजिए कि न्यूयॉर्क से निकलता है, डॉलर के रेट से चलता है। शादी हमारी इंडिया के मुताबिक, दिल्ली से कवानीन आते हैं शादी के, और जिस मुल्क में गए उनकी हर फरसूदा रस्म उठाकर आ गए। इधर रहने वालों का तो हक ही बनता था ना कि इंडिया से सारी रस्में उठाकर शादी में डाल लेते हैं, तो जब अब यहाँ से जरा आगे गए तो यूरोप ने यूरोपियन लोगों की ले ली, उन्होंने फ्लावर गर्ल पकड़ ली। अमेरिका कनाडा तक पहुंचते पहुंचते आपकी शादी में केक काटना शामिल हो गया और आप उनकी रस्में करने लगे। अब आप क्या करें, आप एक ही शादी में सबकी रस्में करेंगे। आज हमारी शादियां पता क्यों मुश्किल है, वी कैंट अफोर्ड देम। गोरों का ये एक मशहूर जुमला है, मैंने खुद कई गोरियों से सुना है, ये कौन है उसके साथ थी, इट्स योर हस्बैंड, नो आई एम नॉट मैरिड, कौन है, ही इज माई बॉयफ्रेंड। तो फिर मैं कभी जब बात में पूछती हूँ कि वाई डिड यू गेट मैरिड, कहते हैं कैंट अफोर्ड, वी नीड लॉट ऑफ मनी, वी डोंट हैव मनी। वो जोड़ा जाकर किराए पे लेते हैं, वाइट जोड़ा, जो ड्रेस होते हैं ना उनका, बनाने का तो तसव्वुर ही नहीं आता। 500-500 डॉलर दे के वो एक धुला हुआ जोड़ा लेकर 2-4-6 घंटे पहन के चर्च में जाकर वहां प्रीस को कुछ देना है, कोई 2-3 हजार डॉलर का खर्चा आता है, वो भी बर्दाश्त नहीं करते। आज हमारा क्या हाल है, बीच में सिर्फ अब्बा हजूर निकल जाएं जो चाओं के साथ बेटे की शादी कर रहे हैं, और वो अम्मा निकल जाएं जो अपने जेवरात से लेकर अपने जूते तक पटकती हैं बरी बनाने में, तो लड़का उस वक्त इस कैफियत में होता है जिस तरह की शादी हो रही है। करोड़ों की शादियां हमारी चली गई, शादियां इसलिए नहीं हो रही, इसलिए लड़के लड़कियां परेशान है कि शादी महंगी बहुत हो गई है, सस्ती चीज होगी सब ले लेंगे, और इतनी मुश्किल शादी, इतना खर्चा, खर्चे को तो छोड़े अभी धुंध में देखिएगा शादियां कैसे होंगी, कैसे लोग एक एक बारात के साथ शामिल होने के लिए 10-10 घंटे का सफर करते हैं। हमने अल्लाह को छोड़कर अपनी जिंदगी मुश्किल बना ली। तौहीद की 3 अकसाम, तौहीद रबूबियत, इसको फिर भी सब मानते हैं, फिरौन भी मानता था हालांकि कहता था ना रब्बुकुम अला, लेकिन हर दौर में जो तौहीद का तकाजा पूरा नहीं हुआ वो तौहीद अलूहियत है। सादे लफ्जों में समझ लीजिए कि अल्लाह को रब तो हम भी मानते हैं, लेकिन अल्लाह की बात नहीं मानते, या का नाबुदू कहकर उसकी बात नहीं मानते, इसको तौहीद अमली कह लें। यानी रब को मानते हो तो रब की भी मानो, नमाज में कहते हो या का नाबुदू या का नस्ताइन तो रियल में भी तो मानो, ये बहुत मुश्किल है। फिर दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ हो, ये तौहीद अमली का तकाजा है। आज हमारे दिल में सबके खौफ हैं सिवाय अल्लाह के, और साफ पता है कि ये गुनाह का काम है, कहते हैं क्या करें फिर मजबूरी है, खुशी का मौका है। और मैं अक्सर जुमला बोलती हूँ कि खुशी के मौके पर अल्लाह को नहीं नाराज करूंगी तो कब करूंगी, लो पहले बेटे की शादी है तो अब मैं अल्लाह को नाराज ना करूं। अजीब बात करते हैं, ये टोन है हमारी, ये आखिरी बेटा, ये पहला बेटा, ये इकलौती बेटी। सच बताइए, क्या आज हमारी खुशियों में अल्लाह खुश होता होगा? बुलाते हैं हम अपने रब को। मैंने तो अब पूरी नियत कर ली है, मैंने इस पर एक सेमिनार रखना है। इस वक्त इज्तमाई तौबा की जरूरत है। जो ना खूब था वही खूब हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का जमीर। 70-75 साल हो गए हैं गुलामी के फंदे से आजाद हुए, लेकिन जहनी गुलामी आज भी है। कल तक आपने कभी सुना था कि बेटियां बापों के साथ डांस करें? बाप बेटी का डांस मुझे खुद किसी ने क्लिप दिखाया, रियल, कोई फेक नहीं है। कभी आपने दूल्हा दुल्हन को डांस करते देखा था? फिल्मों में देखा होगा, इंडियन फिल्मों में। कभी आपने वो सीन जो कभी आज से पीछे 20-25 साल जाएं तो वीसीआर पे फिल्म देखने वाले भाई के हाथ में रिमोट होता था, और कोई सीन आता तो फटफट फटफट आगे कहते थे बच्चों के देखने वाला नहीं है। आज रियली वल्लाही वो आपकी रियल वेडिंग्स में हो रहा है। किसका लफ्ज बोलना इतनी बेशर्मी लगती थी, और क्या फिर उसके बाद अगली किस जिसको देखना भी बुरा लगे। आज आपकी रियल वेडिंग्स में दूल्हा दुल्हन को किस करता, और बेगैरत बने हुए बाप और चाचे और दादे मामे देख रहे हैं, क्या करें। और वीडियो वायरल तो आपने भी देखी है ना, एक लड़की का डांस वायरल हो गया, 2 करोड़ रुपए उसने कमा लिए। ये खबरें आपके थ्रू मुझे भी मिलती हैं। सच है तो सर झुकता है शर्म से, और झूठ है तो अल्लाह ताला इस झूठ को खत्म कर। हम किधर जा रहे हैं? क्या हम भी खुदा रखते थे? लोगों ने तो किसी और रंग में कहा ना कि हमारे हालात ही अच्छे नहीं, क्या कहोगे कि तुम भी खुदा रखते थे? मैं कहती हूं आज के मुसलमान को देकर को, क्या तुम खुदा रखते हो? सबसे तुम्हें डर आता है, अल्लाह से नहीं आता। सबकी खुशी अल्लाह की नहीं है। और याद रखिए कि जो तौहीद जो आपकी मेरी फितरत में है ना, हर उस चीज की नफी करती है जो शिर्क है। बंदा बड़ी मुश्किल से मुशरिक बनता है, बड़ी मुश्किल से किसी और के आगे झुकता है। वो कहते हैं ना, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है दिलाता है 1,000 सजदों से आदमी को निजात। मुसलमान बनना आसान है, मुश्रिक बनना मुश्किल है। देखिए, बच्चे को दूध पिलाएं घटघट पी जाएगा, आप न्यू बॉर्न बेबी के मुंह में जरा कोक डालिए एकदम उसको चुभेगी, क्योंकि वो यूज टू नहीं है। बच्चा को शुरू में माँ का दूध दिया जाता है ना, पी लेगा, फितरत है। इसी तरह तौहीद फितरत में। लेकिन हम बड़ी मुश्किल से परेशान होकर अपने बच्चे बिगाड़ रहे हैं। जो हम अपने बच्चों का हाल करने वाले, सिर्फ इस जनरेशन के गुजरने की देर है, अगली नस्ल इसका जवाब देगी। हम अपने बच्चों को क्या बना रहे हैं? याद रखिए कि इंसान की आजादी की बुनियाद तौहीद और अल्लाह की मार्फत और शिनाख्त है। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, 3 दफा कुरान में यह आयत है। लोगों ने अल्लाह की वो कदर ही नहीं पहचानी जो कि उसकी कदर पहचानने का हक था। तो लिहाजा जरूरत है कि अकीदा तौहीद को दुरुस्त किया जाए। अच्छा, आम हालात में नहीं पता चलता। आप सवाल पूछिए अपने आप से, मेरी तौहीद कैसी है? यहाँ बैठ कर नहीं पता चलना, ये पता चलता है जब जिंदगी में कोई मुश्किल आती है, कोई बीमारी आती है, कोई औलाद का गम आता है, कोई बेटी का गम आता है। जिनकी फितरत पर पर्दे पड़े होते हैं ना, वो अपनी ख्वाहिशात और तासुबात की बिना पर गैर अल्लाह के सामने गर्दन झुका देते हैं। मगर जब कभी मुसीबत और परेशानी बस से बाहर हो जाती है, फिर तड़प कर अल्लाह वाहदहु ला शरीक को पुकारते हैं। आप देखना चाहें तो सूरत यूनुस की आयत 12 देख लीजिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइज़ा मस्सल इंसान दुर्रु, जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है, दाना हमें पुकारता है, ली जम भी ही, कभी करवटों पे, औ कायदन कभी बैठे, औ कायमन कभी खड़े, यानी उठते बैठते खड़े लेटे हमें ही पुकारता है। और फलम्मा कशफनान हो दुर्रहू, जब कभी हम उसकी तकलीफ उसका जरर हटा देते हैं, मर्रा गुजर जाता है, कालम यदउना इला दुर्रम मस्सहू, ऐसे जैसे कभी उसने हमें पुकारा ही नहीं था। खुशियों में हमारा ये हाल नहीं होता, फर्ज भी छूट जाते हैं, नमाजें फौत हो जाती हैं हमारी। एक शादी में हमारी कितनी मौतें होती हैं, हया की मौत होती है, गैरत की मौत होती है, दयूसियत आ जाती है, इसराफ होता है, हमारे इर्द गिर्द वो हो रहा होता है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह कहते हैं ऐसे गुजर जाते हो जैसे कभी पहचानते ही नहीं थे। और खुशियों में अल्लाह को कोई नहीं बुलाते, गमों में बुला लेते हैं। आपका कोई रिश्तेदार आपको सिर्फ गम की खबर दे और आप उसके घर कोई खुशी है तो वो तो ना बताए, दूसरे बताएं कल गए हुए थे उनके घर दावत में, फिर देखिए हमें कैसा लगता है। अल्लाह तो है ही बेनियाज, वो समद है, उसको नहीं चाहिए आपकी मेरी पुकार, वो अलगनी है, समद है। लेकिन हमारा हाल यही है कि अल्लाह के साथ सिर्फ दुखों का रिश्ता, और वो भी बड़ी किस्मत है कि दुख में रब के आगे झुके। उस वक्त भी बड़े बाबे होते हैं, उधर जाओ करनी वाले कराने वाले, उसके पास जाओ, और जब वो गुजर जाता है तो फिर इंसान परेशान। आप मक्की सूरते खोल लीजिए, सब जगह पूरा कुरान इतना मोटा है ना, आप पूरे कुरान का 2/3 खोले ना, 3 हिस्से करें ना, जैसे 30 पारों में से 20 पारे सिर्फ तौहीद पे हैं, कुरान का 2/3 हिस्सा सिर्फ तौहीद सिखाता है आपको, खोल के देख लीजिए आयतें। नमाज पे एक बुकलेट है छोटा सा, आप मामलात देख लीजिए, तलाक की आयतें कितनी है, विरासत की कितनी आयतें, 2.5 सफ़ों पे मेरा ले पूरी विरासत अल्लाह ने बयान कर दी, सूद के बारे में कितनी है, सारा कुरान हर सफ़े पे तौहीद के वर्क हैं कि अल्लाह कहता है कि पूछो। सूरत अलनाम आयत 63 देख लीजिए, कुल मैं युनजी को मिन जुलुमातिल बर्री वल बहरी, आप कहिए वो कौन है जो तुम्हें खुशकी से और दरिया की जुल्मत से निजात दिलाता है, तुम इसको पुकारते हो गिड़गड़ा कर पुकारते हो चुपके चुपके कि अगर तू हमें निजात दे दे तो हम जरूर शुक्र करने वालों में से हो जाएंगे, और जब वो वक्त गुजर जाता है तो फिर हम कहते हैं कि खत्म। अब ये तो चंद बातें थी, अगली बात जिसको मैं वाइंड अप करूंगी अब, कि तौहीद के इंसानी जिंदगी पर असरात क्या मुरतब होते हैं, यानी जब बंदा मुवाहिद हो जाता है, इसको मुवाहिद कहते हैं ना, अल्लाह को एक मानने वाला, तो आपके अंदर क्या असर आता है। मैं मिसाल दे देती हूँ ना कि जैसे चले शिर्क करने से क्या होता है, बंदा डरपोक हो जाता है, मुशरिक हर चीज से डरता है, किसी की बददुआ से भी डरता है, किसी की नजर से भी डरता है, आँख से भी डरता है, पीपल के पत्ते से भी डरता है, बिल्ली चूहे से भी डरता है। तौहीद आपकी पक्की, आप अपने आप को बल्कि इन अलामात की रोशनी में पहचानिए कि क्या आपकी तौहीद पक्की है, तो पहली बात है कि तौहीद इंसान को बहादुर बना देती है, और इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे सहाबा थे नबी के, दुश्मन कहा करते थे इनको तो मौत से भी नहीं डर लगता, हम इनको कैसे डराएं, हजरत बिलाल का मालिक उनको मार मार के दमुआ कर देता और बिलाल अहद अहद पुकारते, खुद उमैया कहता था कि तुम्हें चोट नहीं लगती, तुम्हें डर नहीं लगता, कहते थे नहीं, बल्कि कहते ही अहद थे जिससे उसको चिढ़ थी, बहादुर हो जाता है। आज भी सच्चे मोमिन बहादुर हैं। अभी आप देखिए ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द दौर में गुजरती हैं चीज़ें, लोग छोटी छोटी चीज़ों पर डरते हैं डराते हैं, अभी कोरोना का दौर था, जरासीमों का कितना डर था, वायरसेस का डर था, ये हो गया तो वो होगा, वैक्सीनेशन नहीं लगाया, हाय हाय मर गए, हाय जरासीम लग जाएंगे, हाय मास्क नहीं पहना, हाय सैनिटाइजर्स नहीं यूज़ किए। देखिए तमाम करना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दिल में डर नहीं होता मोमिन के, मोमिन बहादुर होता है। फिर इस तरह दूसरा एक बहुत प्यारा असर आता है, और वो क्या है कि जिसकी तौहीद पुख्ता है ना, वो कभी ना उम्मीद नहीं होता, ला तकना तो मेरा रहमत इल्ला, सारी दुनिया भी कह दे ये काम नहीं होना, बंदा कहता है होना, रब के साथ जुड़ना, खौफ और गम नहीं आता उसकी जिंदगी में, ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर अगला उसके अंदर असर कहता है कि इज्जत और जिल्लत, नफे और नुकसान, जिंदगी और मौत, अमीरी और गरीबी, सब का मालिक अल्लाह को जानता है, जाओ ले लो मुझसे, तुम नहीं ले सकते। और वो दुआ याद कर लीजिए कि अल्लाहुम्मा ला मानी लिमा आतैत वला मोती लिमा मनात वला यनफउ ज़ल जद्दी मिनकल जद्द। बंदे को कोई नजरों में जचता ही नहीं है, सच बताऊं जिसकी नजर अल्लाह पे, उसके लिए सामने दुनिया के खजाने ले, उसको नहीं कोई जचता, उसके हाथों में दौलत है, दिल में कोई नहीं, हौके नहीं भरता, एक एक जोड़ा बनाने के लिए लाखों को आग में नहीं डालता। और इसी तरह से आप देखिए एक और फायदा होता है कि वो किसी गैर के आगे नहीं झुकता, किसी ताकतवर से नहीं डरता, और दुनिया से उसकी वाबस्तगी बहुत थोड़ी रह जाती है। कुन फिर दुनिया का नका गरीबन और आबिर सबील, बस दुनिया से तो मैं गुजरा हूं तलबगार नहीं, कहते हैं ना गुजरा हूं बाजार से खरीदार नहीं हूं, है हम में से कोई सामने तो जरूरत भी ना हो तो हम 4 चीजें खरीद आते। और जब इंसान की फितरत मसख नहीं होती ना, तो वो खुद बहुत उसको रोक देती है कि ये गलत काम है, ठीक नहीं कर रहे। जो शख्स फितरत की पुकार को नजरअंदाज करेगा, दुनिया की रंगीनियों में गुम होगा, वो एक वक्त आएगा कि रब की बात मानना सुनना भी गवारा नहीं करेगा। आज आप कहते हैं ये करो वो नहीं करो, बच्चे माइंड करते हैं, किसी का शौहर माइंड करता है, किसी की बीवी बिगड़ी हुई है, जिसका भी ये हाल है समझ लीजिए कि उसको कुरान पढ़ाने की जरूरत है। मैं तो यही कहूंगी आपकी मेरी जिंदगी का जो असल खूबसूरत, जो कहना चाहिए कि बेहतरीन चीज है ना, वो क्या है कि अपने आप को, अब आप कहेंगे कि तौहीद कहाँ से सिखाएं, कुरान फातिहा से नास, पहला पैगाम ही या कनाबुद या कनस्तैन, तो इस कुरान से जोड़ना है। मैंने जब तक बाशऊर तरीके से कुरान नहीं पढ़ा था, अपनी पीछे से मेरा बैकग्राउंड भी एक ऐसा खानदान जिसको कहें कि लोग कहते हैं कि हम तो हैं ही पक्के मवाहिद, ना मैं कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है, सारा खानदान अपने आप को कहता था कि फलां मुशरिक है, हम बड़े पक्के मवाहिद हैं, हम भी ये सोचते थे। जब मैंने फर्स्ट टाइम किताब तौहीद पढ़ी, यकीन करें कि मैं अपने आप से नजरें ना मिलाऊं। जो चीज शिर्क की किस्म आप देखें वो आपको अपने में लगती है, ये भी है ये भी है। यानी मिसाल देती हूं कि किसी की खुशी के लिए कुछ करना, मसलन आप घर साफ करते हैं ना, हम भी करते हैं, करना चाहिए, अतहुरु शत्रुल ईमान। लेकिन जब मेहमान आ रहा है तो घर साफ कर रहे हैं, उस वक्त कोई ये तो नहीं मकसद होता कि स्वाब होगा, क्या होता है, लोग कहेंगे ये कितनी सफाई पसंद है, चले सफाई को पीछे करे वो, यान तो हम खुद करते ही नहीं, मसी बड़ी, खाना पकाना, घर में मेहमान आ गया ऐसे ही, भाई दाल तो पकी हुई थी, चावल भी हैं, साथ दो चार रोटियां बना ले। हम कहते नहीं, एक कुकर में गोश्त चढ़ा देंगे, फ्रीजर से शामी कबाब निकालेंगे, उसको फ्राई करेंगे, भाई क्या जरूरत है। नहीं वो क्या कहेंगे कि मैं दाल खिला दी, भाई अगर मुर्गी खानी थी तो बता के आते, क्या हमारे अंदर ये है कि नहीं है। बस इन छोटी छोटी बातों से अपने आप को इंशाल्लाह समझना है। नियत कीजिए, हमने इस साल दर कुरान सुनना है, फातिहा से नास तक आपने कुरान के एक एक तर्जमे के ऊपर गौर करते हुए अल्लाह ताला को पहचानना है। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जो छोटे छोटे लेक्चर्स आ रहे हैं आप वेबसाइट से सुनते रहें, तो थोड़ा सा इल्म को वक्त दीजिए, थोड़ा टाइम लगाइए और कुरान सीखिए। आप सबको कुरान आता है, लेकिन क्या आपको सही पढ़ना आता है, उसका तर्जुमा आता है, उसकी तजवीद है, उसका तर्जुमा है। अभी लाएं किसी जगह से कुरान पढ़ के दिखाऊं तो समझ आता है। नमाज में जो आपने जोहर में सूरत पढ़ी थी कौन सी पढ़ी थी, असर में कौन सी सूरत पढ़ी थी, समझ आई थी? आज सुबह फजर में कौन सी सूरत पढ़ी थी तो क्या समझ आई थी? अगर नहीं समझ आई तो सॉरी, आपका हक बनता है इस दुनिया से जाने से पहले हम अपने इस ताल्लुक को मजबूत करें, और वल्लाह ही अपने बच्चों को अपने साथ लेकर चलिए। हमारे बच्चे बहुत प्रेशर में हैं, हमारे बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, बाहर की दुनिया का इल्हाद है, नेट और सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को एक किया हुआ है, और आज कुफर का एजेंडा यह है कि इनको मुसलमान नहीं छोड़ना, ये काफिर हो ना हो लेकिन ये मुसलमान ना रहे। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राजी हो। जजाकल्ला खैर हमारे साथी जिन्होंने भी इख्तमाम किया, जैसे भी हम पहुंचे, जिसके जरिए से पहुंचे, एक लफ्ज़ के साथ भी उसकी मदद की तो अल्लाह ताला उसको कबूल करे, हम सब के बच्चे बच्चियों के नेक जोड़ मिलाए। और मैं आपको 100 बातों की एक बता दूं, बच्चों के घर बच्चियों के घर तब बसेंगे जब उनको अल्लाह की कदर आएगी। आप अल्लाह के बन जाए, अल्लाह आपका बन जाता है। और अब जिन बच्चियों की शादियां नहीं हो रही उनको कुरान पे डाल दीजिए, जिन बेटों की शादियां नहीं हो रही उनको रोजों पे लगा दीजिए, यानी माशरे की तत्हीर इस वक्त बहुत जरूरी है। जजाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाए।